Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم حضرت عید الفقار احمد آمد مقات ہوں رقصمند بیان کرتے ہیں اپنے حضرت کی کتاب امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھتے ہیں، اور اس میں سے ہم جو پہلا ٹاپک ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ تھا انتظام خانہ. خانہ سے مراد گھر، تو انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن کیا بنی؟ ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، انتظام خانہ. تو اس میں بہت ساری ہم نے باتیں پڑھی تھیں اور ڈسکس بھی کری تھیں کہ دن میں کے سفید صاف رکھنے والی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پرائیورٹی وائز حضرت نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا، اور اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق بھی کافی ساری باتیں اس کے اندر آئی تھیں کہ بھائی بچے بھی تو گھر کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کی مینجمنٹ یا بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ سب بھی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا حصہ ہے. ایک منٹ، یہ جو آپ اسکرین شیئر کرتی ہیں نا، تو اس سے پھر میری ساری اسکرین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایک منٹ، اب مجھے دوبارہ سے کرنا پڑے گا. تو اچھا، تو اس وجہ سے ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کے اندر ہاؤس کے اندر رہنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں. لیکن اس میں مزے کی بات یہ، یا مزے کی تو خیر کیا، لیکن پوائنٹ ٹو نوٹ، ٹھیک ہے، اس میں بہت ہی نوٹ وردی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کے اندر بچوں کے متعلق تو کافی ساری باتیں ہوئیں، لیکن شوہر کے متعلق جو ہے وہ زیادہ باتیں نہیں ہوئیں، بلکہ بہت ہی کم باتیں. ٹھیک ہے، جو کہ پچھلی کلاس کے اندر ہی میرے خیال میں سب سے زیادہ باتیں جو ہیں وہ شوہر کے بارے میں ہوئی ہیں، ورنہ جو ہے وہ بچوں کے بارے میں تو کافی ساری تفصیل ہوئی تھی. تو اس سے ایک اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ اشارہ، کہ بچے، کم از کم جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ گھر کا حصہ ہوتے ہیں، مطلب وہ گھر میں ہوتے ہیں، یا آئیڈیلی اسپیکنگ ان کو گھر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کو گھر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا اور اس کا جو ہے وہ نام لکھوا دیا کسی اسکول کے اندر، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ چلنے کے قابل ہوا 1 سال 1.5 سال، تو اس کو جو ہے وہ گھر کے باہر بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ باہر کا جو وقت ہے وہ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. پہلے جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے باہر جاتا تھا بچہ یا جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو 4 گھنٹے کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو 6 گھنٹے کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو 8 گھنٹے کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب جو ہے وہ 10-12 گھنٹے کی جو ہے وہ گھر سے باہر گزارتا ہے بچہ. ٹھیک ہے، تو شروع میں جو بچے کو جو ہے نا گھر کے اندر زیادہ رکھنا ہے، وہ گھر کا حصہ ہے، اور اس کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ گھر ہی والوں کو کرنی چاہیے. ہمارے اکابرین کے یہاں، ہمارے بڑوں کے یہاں چھوٹے بچوں کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ گھر میں ہی ہوا کرتی تھی، اس کو آؤٹ سورس نہیں کیا جاتا تھا. کافروں نے تو ہوم سکولنگ بعد میں شروع کری ہے، کافروں کے یہاں تو ہوم سکولنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بعد میں آیا ہے. اصل میں تو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ ہمارے آبا و اجداد کا کانسیپٹ ہے. جب یہ آپ بزرگوں کی لائف ہسٹری پڑھیں گی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب میں اتنا چھوٹا تھا تو میں نے فلانی کتاب جو ہے وہ اپنی امی سے پڑھنی شروع کری، فلانی چیز جو ہے وہ اپنے ابو سے سیکھی، پھر اس کے بعد فلانی کتاب مجھے میرے ماموں نے پڑھائی، پھر فلانی کتاب میرے چچا نے مجھے پڑھائی، میرے تایا نے مجھے پڑھائی، مجھے فلاں نے مجھے پڑھائی. تو بھئی یہ سب جو घर वाले पढ़ा रहे होते थे, खानदान वाले पढ़ा रहे होते थे, इसी को तो होम स्कूलिंग कहते हैं। ठीक है, बाद में जो मदरसे के जो असातजा होते थे, जो कि दूसरे गैर लोग होते थे, वो तो बाद में बड़ी किताबें पढ़ाते थे ना, छोटी किताबें तो घर वाले ही पढ़ाते थे या करीबी खानदान वाले ही पढ़ाते थे। तो ये निज़ाम कोई हमारे यहाँ स्ट्रेंजर निज़ाम नहीं है, ये तो हमारा अपना निज़ाम है। आज जो है वो हम ये निज़ाम सीख रहे हैं अमरीकियों से और यूरोपियन से, कि हाँ भाई अमरीकी भी होम स्कूलिंग करते हैं और वो भी होम स्कूलिंग करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल तो बच्चे जो है वो घर का हिस्सा होते हैं, और शौहर जो है घर का तो वो भी हिस्सा होता है, लेकिन उसका ज्यादा वक्त जो है वो शुरू से ही, जब से वो शौहर बना होता है, ठीक है, जब से शौहर की टोपी उसके सर पे आई होती है, शौहर की कैप पहननी शुरू करी होती है उसने, तो उस वक्त से ही वो बाहर के काम कर रहा होता है, जॉब पे जा रहा होता है या अपने बिजनेस पे जा रहा होता है, या फिर घर की जो बाकी ग्रोसरीज और दूसरे इस किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं वो बाहर जा करके पूरा कर रहा होता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट के अंदर फिर उनका हिस्सा जो है फिर जाहिर सी बात है कि वो कम ही हो जाता है। इसी वजह से फिर हजरत ने ऐसी बात भी कर दी थी इसी टॉपिक के अंदर, के घर की सफाई में मर्द का रोल कितना होता है, कि कचरा जो है वो कमेटी के डस्टबिन तक फेंक देना ये उसका काम होता है, और वैक्यूम के दौरान जो है वो अपनी पैर जो है वो जमीन से उठा देना ताकि नीचे से वैक्यूम हो जाए, ये उसका रोल होता है। लेकिन इससे ज्यादा भी रोल होता है कि हजरत ने बात समझाने के लिए खाली जो है वो दो रोल्स लिख दिए हैं। इससे ज्यादा रोल्स क्या होते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि घर के अंदर आते थे तो अपने काम जो है वो खुद कर लिया करते थे। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर जो है वो एक बात जो कि पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी इसी किताब के सफा नंबर 202 में से, कि हजरत ने जो है वो जापान की मिसाल दी। ठीक है, तो जापान की मिसाल में लिखा था कि भाई जापान में तो ये एक आदत है कि वहाँ औरत खाविंद को जूते पहनाती भी खुद है, और वापसी पे जूते उतारती भी खुद है, घर के बाकी कामों में वो नौकर की मदद ले लेगी, लेकिन जितनी भी मसरूफ हो उसको वो अपने लिए रिस्पेक्ट इज्जत समझती है कि मैं बीवी हूं और ये मेरा फर्ज है। ठीक है, इसलिए जब खाविंद जाने लगता है तो उसके पाँव में वो जूता खुद पहनाती है, और जब जब खाविंद घर आता है तो उसके पाँव से जूता खुद निकालती है। उस सोसाइटी में इसको एक इज्जत की चीज समझा जाता है। ठीक है, तो हजरत ने ये चीज यहाँ पर लिख दी थी और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने जब इसको पढ़ा था तो फिर हमने क्या बात करी थी, ठीक है, उस वक्त हमने क्या बात करी थी, ये थोड़ा सा क्लास क्विज के तौर पर हम आपसे पूछते हैं ताकि याद पता चले कि भाई किसको याद है। ठीक है, तो जब हमने ये चीज पढ़ी थी तो हमने इसके ऊपर जो हम आदतन फिर लंबी चौड़ी जो है वो डिस्कशन करते हैं, तो क्या बात करी थी इसके ऊपर जब हमने ये बात पढ़ी थी पिछली क्लास में? जी क्या बात बताई थी आप लोगों को ये पढ़ करके? हाँ बहुत ही, बस हिंट दे दें तो बाकी बात हम फिर खुद ही कर लेंगे। अच्छा, हमने आपको ये बताया था कि उनके यहाँ वालिदैन बूढ़े होकर मर जाते हैं और औलाद को पता भी नहीं चलता। जापान की हमने ये बात आपको बताई थी, और हमने आपको ये बताई थी हाँ, कि इन्होंने लिखा दिस यूज टू बी देयर प्रैक्टिस बिफोर इन द शोगन एरा, बट नाउ दे आर लाइक अदर कंट्रीज एंड दे हैव अडॉप्टेड वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। हम सारी दुनिया ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब सारी दुनिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन बन गई है। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक थी, आज जापान का हाल अलग है। हमें तो इस बात पे जापानी औरत से ज्यादा फख्र करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। ये पुराने दिनों की बात है, अब वहां भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, जज़ाकुमुल्लाह। तो हमने ये आपको बातें बताई थी कि कि जो जापान का हाल है ना, वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो जापानी ट्रेडिशंस को जो है वो लेके बैठे हुए हैं या उन्हीं के ऊपर अमल कर रहे हैं, बल्कि वो पूरा का पूरा जो है वो मगरबी तहजीब का हिस्सा बन चुके हैं। अब उनकी अपनी जाती जो शनाख्त है ना, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। जापान तो जापान, हमने आपको चाइना के बारे में भी यही बात बताई थी, ठीक है? चाइना का भी वैसे ही हाल है जैसे कि जापान का हाल है, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि पिछली क्लास में जब हमने ये बात पढ़ी तो हम उस तरफ निकल गए थे, उस तरफ निकल गए थे कि चाइना और जापान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कैसी है। तो आलमी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी, ठीक है? ठीक है, ये बात कि बस ये जो है ना, बस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक्सटेंशन है, ये कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन की दुश्मन नहीं है, ठीक है? ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की दुश्मन नहीं है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही बन चुकी है, उसी की एक्सटेंशन बन चुकी हैं, ठीक है? तो अब जो है ना, इनके दरमियान जो आपस में चलती रहती है ना चीजें, वो बस एक आई वॉश होता है, एक नजरों का धोखा होता है, ठीक है? और उसको जो है वो संजीदा नहीं लेना चाहिए, कोई आपस में दुश्मन नहीं है। हाँ, पैसे कमाने में कभी कोई मुल्क पैसे कमाने में आगे बढ़ जाता है, कभी कोई मुल्क आगे बढ़ जाता है, कभी किसी के अंदर जो है वो ज्यादा इंडस्ट्रीज बन जाती हैं, कभी किसी के अंदर जो है वो उल्टे तमाशे होने शुरू हो जाते हैं, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन दुश्मनी कोई नहीं है इनकी आपस में, ठीक है ना? ये जो सारा आपको मीडिया पे नजर आता है ना, ये सब बकवास होता है, कोई इनकी आपस में दुश्मनी नहीं होती है, दे आर वन एंड द सेम, ठीक है? जो एक दुनिया में तहजीब इनसे हट करके है ना, जो कि अलग तहजीब है, वो ये खुद भी मानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तहजीब है, सिर्फ और सिर्फ इस्लामी, पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, ईरानी नहीं, अरबी नहीं, ये अलग नहीं है, ये तो सारी की सारी ये भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन बन चुकी हैं। पाकिस्तानी सिविलाइजेशन भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, अरबिक भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, लेकिन जो दीन इस्लाम को, जैसा कि वो नबी अलैहिस्सलाम ने पेश किया था ना, जो उस पर अमल करते हैं ना, वो इस्लामी सिविलाइजेशन वाले लोग होते हैं, और उनका कोई मुल्क नहीं है दुनिया के अंदर इस वक्त, उनका कोई मुल्क नहीं है दुनिया में, ठीक है? तो ये हकीकत जो है वो आपको भी इतना तो मालूम होना चाहिए, उन खवातीन को भी, ठीक है? तो हम उस तरफ निकल गए थे, ठीक है? अच्छा, हम किस तरफ नहीं निकले थे, जिस तरफ भी हमें निकलना चाहिए था, इस वाली बात को पढ़ के, ये ऐसा ट्रिकी सवाल है जिसको जो जवाब देगा उनके लिए स्पेशल दुआ, ठीक है? कि हम किस तरफ नहीं गए थे, इस वाली बात को पढ़ के, जिस तरफ हम वैसे जाया करते हैं। मिसाली औरत याद है, मिसाली औरत की किताब पढ़ी थी, तो उसके अंदर भी इस तरह की बातें हजरत जी ने करी थी, तो हमने उस वक्त क्या बताया था, क्या बताते थे आप? अगर हम ऐसा कर लें तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, कैसा कर लें, जापानी औरत की तरह कर लें। जब हम मिसाली औरत की किताब पढ़ते थे और जब हम मिसाली मर्द की भी किताब पढ़ते थे, उसी साथ साथ ही मिसाली मर्द भी चल रही थी मर्दों में, और आप में से भी अक्सर जो है वो अटेंड किया करती थी मिसाली मर्द की क्लास को भी, उसमें भी हजरत जी ने इसी तरह की बातें करी, ठीक है? तो उस वक्त हम आपको क्या बताते थे, यानी जब हजरत जी दूसरे मुआशरों की बात करते थे, अमेरिका की बात करते थे और यूरोप की बात करते थे, और हत्ता के अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की रिसर्चेस की बात करते थे, तो उस वक्त हम आपको क्या कहते थे, ठीक है? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी भी नहीं है बल्कि ये बड़ी, यानी जरा लॉन्गर याददाश्त की का इम्तिहान है, पुरानी याददाश्त, क्योंकि अब उसको कई महीने गुजर चुके हैं, सारी मर्दों सारी औरतों खत्म हो गई, तो उस वक्त हम आपको क्या बताया करते थे कि ये मिसालें सिर्फ इसलिए देते हैं कि, हाँ माशाल्लाह पहुंच तो आप लगता है गई हैं, वुड यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर बिकॉज, हाँ माशाल्लाह, ठीक है, इसलिए ये मिसालें देते हैं, इफ यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू मी एटलीस्ट लिसन टू दोज Whom you look up to. अगर तुम मेरी नहीं सुनते तो उनकी तो सुन लो जिनको तुम कुछ समझते हो, ठीक है? लोग उनको मानते हैं, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन नहीं उनका तो बन, ये बताते थे बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया कि उस वक्त हम आपको यही समझाते थे कि हजरत जी ने जो ऑक्सफोर्ड की रिसर्चेस बयान करी है ना, जो हार्वर्ड की रिसर्चेस बयान करी हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च बयान करते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, इसलिए नहीं करते कि हमारे लिए वो काबिले तकलीद हैं, हमें उनकी तकलीद करनी चाहिए, हमें उनकी रिसर्चेस के ऊपर एतमाद करना चाहिए, हरगिज नहीं, इसलिए नहीं बयान करते थे, बल्कि इसलिए बयान करते थे क्योंकि ऑडियंस ऐसी थी। ठीक है, सुनने वाले ऐसे लोग होते थे अक्सर, सारे नहीं लेकिन अक्सर ऐसे लोग होते थे जो कि हार्वर्ड, कोलंबिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज को जो है ना, ये बहुत अजीम समझते हैं और इनकी बात को तो पत्थर पर लकीर समझते हैं, उनको इनकी बातों को तो क्या नकारे खुदा समझते हैं। ठीक है कि भाई ये जो बात करेंगे ना वो ठीक होगी, मौलवी साहब जो भी कहते रहे वो तो ठीक नहीं हो सकता। तो अजी इस तरह से, इस तरह की बातें करते थे कि तू अगर मेरी नहीं सुनता ना सुन, उनकी तो सुन, ठीक है ना, जिनको तू बड़ा समझता है उनकी तो सुन, वो भी तो यही कह रहे हैं, ठीक है ना, वो भी तो उसी नतीजे पे पहुंचे हैं जो कि हमें 1400 साल पहले हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने करके बताया और हमें इस बातें सारी समझाई जो कि हमारे मशाइख पर हमें खोल खोल के बयान करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली यही हजरत जी फरमा रहे हैं कि जापानीज सिविलाइजेशन को, जापानीज को तुम बहुत अच्छा समझते हो ना, बड़ी तरक्की याफ्ता कौम है, बड़ा दुनिया के अंदर जो है वो आगे बढ़ चुकी है और जो है वो उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है, बड़ा नज्म व जब्त है। ठीक है, हत्ता कि ऐसे ऐसे भी पिछले दिनों ही, 1-1.5 साल ही पुरानी बात है, कोई पता नहीं एक साहब उड़ाते हैं ये सारे के सारे उठ करके, ठीक है, वो वीडियोज बना बना करके जो है वो वायरल करना शुरू हो गया, जिसके अंदर वो क्या वीडियो थी कि जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर कोई तबलीगी इज्तिमा नहीं होता, जापान एक ऐसा मुल्क है जहां पर जो है वो मस्जिदें नहीं होती, जापान एक ऐसा मुल्क है जहां पर जो है वो टोपी वाले नहीं होते, लेकिन जापान के अंदर ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसा भी अच्छा है, वैसा भी अच्छा है, हर चीज अच्छी है। ठीक है, और जापान की तारीफें, और जापान की तारीफें, और जापान की तारीफें, राइट, और उस तरीके से जो है वो पता नहीं शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, तुम कैसा क्यों नहीं कर सके जैसे जापानियों ने कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी जो निगाहें हैं ना वो ऐसे, हमारे ऐसे ये खुदा हैं हमारे, इनको हमने खुदा बनाया भाई। ठीक है, जापान को खुदा बनाया, कभी जो है वो अमेरिका को बनाया हुआ, अमेरिका को थोड़ा मुस्तकली बनाया हुआ है, लेकिन यूरोप को कभी बनाया हुआ, कभी जो है वो सिंगापुर को बना लेते हैं, कभी जो है वो आजकल चाइना को बना रहे हैं। ठीक है, तो जिसका कोई खुदा नहीं होता ना, तो उसका ऐसे ही होता है कि सभी उसके खुदा होते हैं। ठीक है ना, जिसका कोई खुदा यानी जिसका अल्लाह खुदा नहीं होता ना, तो उसके फिर सारे खुदा होते हैं। जब भी तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते कहते मर गए। ठीक है कि ये एक सजदा क्या है वो, कि हजार देता है हजार सजदों से निजात, ये एक सजदा जो तू अल्लाह को करता है ना, ये तो हजार सजदों से तुझे निजात देने वाला सजदा है। ठीक है, ये एक सजदा हजार सजदों से निजात देने वाला सजदा है, लेकिन हम उस एक अल्लाह को सजदा करते नहीं है। हाँ, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ठीक है, लेकिन हम उस एक अल्लाह को सजदा करते कोई थोड़ी, हम तो उठक बैठक कर रहे होते हैं ना, हम तो देखा देखी जो है ना वो सारे के सारे ये इबादत के काम कर रहे होते हैं, हम एक अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे होते। इसी वजह से अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान और पता नहीं क्या क्या, जिसको चढ़ता हुआ सूरज, जिसको नमरूदियों, जिस तरह पिछली क्लास में बात हुई थी नमरूदियों की तरह, नमरूदी भी इसी तरीके से जो चढ़ता सूरज था उसको पूजना शुरू कर देते थे। ठीक है, उसी तरह हमारा भी यही हाल है। तो यहाँ पे हजरत ने जापानी औरत की जो मिसाल बयान करी ना, इसलिए नहीं बयान करी है कि हमें जापानी औरत को फॉलो करना है या हमारी औरत को जो है वो जापानी औरत की तरह से काम करना चाहिए, बल्कि इस वजह से बयान करी है कि तुम मेरी नहीं सुनता ना सुन, उनकी तो सुन जिनको तू बड़ा समझता है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ये हमारे मुक्तदा हैं, इनको हमें फॉलो करना है। तो इस वजह से जो सहाबियात की आगे बातें आ रही है ना, हमें उनको समझना है और उनके मुताबिक उनको जो है ना फिर अपने इस 21वीं सदी की जिंदगी के अंदर अप्लाई करने की चीजें सीखनी है। ठीक है, हमारा हमारा जो 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 सिलसिला है वो नबी अलैहिस्सलाम से जाके जुड़ता है, जापान से नहीं जुड़ता, अमेरिका से नहीं जुड़ता, चाइना से नहीं जुड़ता, ऑस्ट्रेलिया कहीं से नहीं जुड़ता, चाहे वो बजाहिर कितनी अच्छे काम कर लें, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो अल्फाज लिखे हैं तो ये चूंकि जरा सा रिंग इन करते थे, रिंग इन करते थे नबी अलैहिस्सलाम के इन फरमान से कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को सजदा को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ठीक है, अगर मैं किसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता ना तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ठीक है, तो इससे चूंकि बीवी के जिम्मे शौहर की खिदमत आती है, ठीक है, तो इसी तरह की बात जो है वो जापानी कल्चर से हजरत को नजर आई तो हजरत ने उसको बयान कर दी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद इस तरह से करके भी दिखाते थे। ठीक है, कि बीवी से जो है वो अब सारे काम करवा रहे हैं घर के, और इस तरह से घर के अंदर एक 100% मतलब क्या कहते हैं अनान अथॉरिटी के तौर पर रह रहे हैं। ठीक है, तो हमने तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को फॉलो करना है मर्दों में, और औरतों को जो है सहाबियात की सुन्नतों को फॉलो करना है। बहरहाल, तो अब जो है वो करना क्या है तो भाई वो सीखेंगे तब करेंगे। ठीक है, करना क्या है वो सीखेंगे तभी करेंगे, बगैर सीखे हुए नहीं कर सकते। तो हमने पिछली क्लास के अंदर यहाँ तक पढ़ लिया था पेज नंबर 203 के ऊपर, 203 के ऊपर, के ये जो घर का काम है औरत को चाहिए कि वो उसको रोजाना अपनी जिम्मेदारी समझकर करे, जैसे नमाज इबादत है ऐसे ही घर के काम औरत के लिए इबादत है। ठीक है, जैसे मर्द को चाहिए कि वो घर की जो नीड्स को पूरा करना है तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझ करके पूरा करे। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट होकर के और जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से घर की जो बाहर से जो कमाने की जिम्मेदारियां हैं और घर के दूसरे जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारियां होती हैं और जिसके अंदर गाड़ी की भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आती है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझ करके करें। ठीक है, उसी तरीके से औरत के ऊपर भी घर के काम अपनी जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए, ये नहीं कि बस मारे बांधे का कर रहे हैं और इंतहाई जो है वो नाक भूं चढ़ा रहे हैं कि क्यों क्या मुसीबत है और क्या हो गया है, हम ही सारा काम करना पड़ता है, इस तरह से ना करे, बल्कि इबादत समझ के करे, उसको सवाब मिलेगा, जन्नत की करेंसी उसको मिलेगी, जब जन्नत में जाएगी तो फिर वहां की नेमतें खरीदने में जो है ना उसके ये करेंसी काम आएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला जुमला हजरत ने लिखा था ना, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि अच्छा पहले जुमला पढ़ लेते हैं। फरमाते हैं कि मगर अजीब बात है कि हाउस वर्क इज व्हाट ए वुमन डज बट नोबडी नोटिसेस, नोबडी। ठीक है, नोबडी जो है ना इसका मतलब क्या होता है, नोबडी इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मेन डोंट नोटिस इट, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इवन अदर वुमेन डोंट नोटिस इट। ठीक है, कि हाउस वर्क इज व्हाट ए वुमेन डज बट नोबडी नोटिसेस। ठीक है, कि अगर आप घर को क्लीन ना करें तो सबको पता चल जाता है कि घर क्लीन नहीं है, और जब आप रोजाना घर क्लीन करती हैं तो कोई नोटिस ही नहीं करता, जब आप रोजाना घर क्लीन करती हैं तो कोई नोटिस ही नहीं करता। यहाँ पे जो लफ्ज कोई है ना, ये बड़ा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि जब औरत की बात होती है ना तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो मर्द जो है वो दुश्मन बन जाता है। ठीक है, मर्द जो है वो दुश्मन बन जाता है कि जी मर्द नोटिस नहीं करते, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे खाविंद नोटिस नहीं करते। ठीक है, या मर्द नोटिस नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि मर्द नोटिस करने का खाली मसला नहीं है, कोई नोटिस ना करने का मसला है। तो कोई के अंदर औरतें भी आ जाती हैं, ये जो सास अम्मा होती हैं ये क्या होती हैं, मर्द होते हैं। औरत की जो सास होती है, बहू की सास होती है, ये मर्द होता है या ये होती है औरत होती है। ठीक है, तो ये जो पूरे मुआशरे का निजाम का मिजाज ऐसा बना हुआ है जो कि शैतान ने बनाया है और कुफार ने बनाया है। ठीक है, कि जो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है ना उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करो, उसको किसी ना किसी तरीके से खराब करो। अब उसके लिए तालीमी निजाम को भी चेंज किया, ठीक है, तालीमी निजाम को चेंज किया, जिसके ऊपर बड़ी तफसील से पिछली क्लास में बात हो चुकी है कि औरतों को वो वाली तालीम दो जो कि बाहर के कामों के लिए इस्तेमाल होती है, औरतों को वो वाली तालीम दो जो कि कमाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि करियर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, उनको घर के मुतालिक तालीम दो ही नहीं, ठीक है, रिश्तों के मुतालिक तालीम दो ही नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि उसको करना ही नहीं आएगा काम, घर का काम करना ही नहीं आएगा, रिश्तों को संवारना आएगा ही नहीं, औलाद की तरबियत करना आएगा ही नहीं, जब वो बुरी तरीके से कोई काम करेगी बगैर सीखे जो भी काम किया जाता है वो बुरा ही काम होता है, ठीक है ना, इसलिए कि इंसानों को वो जानवरों को तो अल्लाह ताला ने सिखा करके दुनिया में भेजा होता है ना, हत्ता कि एक मजमून हमने पढ़ा तो बच्चों को भी पढ़ने के लिए दिया था कि वो जो बर्ड्स माइग्रेशन करती हैं, ये बर्ड्स जो होती है ना परिंदे, ये हजारों मील का सफर करते हैं, जब मौसम ठंडा हो जाता है ना तो रशिया से जो है ये बड़े बड़े इनके झुंड निकलते हैं और एशिया के इलाकों में जाते हैं जहां पे गर्मी होती है, अफ्रीका के इलाकों में जाते हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं होती है, तो ये जो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इनके पास कोई मैप नहीं होता कि जिसको देख देख करके ये अभी ट्रैवल कर रही होती है, यहाँ अभी अफ्रीका हमने कैसे पहुंचना है, एशिया हमने कैसे पहुंचना है, ठीक है, कोई GPS सिस्टम इनके पास इंस्टॉल नहीं होता जो कि उनको जो है वो सैटेलाइट से देख करके बता रहा होता है कि तुमने इधर जाना है फिर इधर जाना है, इधर नहीं, एग्जैक्टली उनको पता होता है कि वो कहाँ उनको सफर करना है, हत्ता कि दरमियान में कोई समंदर आता है ना तो वो समंदर को भी अवॉइड करके अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं और खुश्की के ऊपर सफर करती हैं, क्योंकि एक हिकमत उसकी ये समझ में आती है कि अगर समंदर में उनको कोई मुश्किल पेश आ गई तो वो लैंड नहीं कर सकेंगी, समंदर पे लैंड नहीं कर सकेंगी लेकिन खुश्की पे वो लैंड कर सकेंगी, उतर सकेंगी, तो वो समंदर के रास्तों को अवॉइड करती हैं, हत्ता के जहां पर वो समंदर अगर अवॉइड नहीं कर सकती हैं तो जहां पे समंदर सबसे कम होता है ना, जैसे खुश्की जो है वो एक्सटेंड हुई भी होती है तो अब वहां पे सबसे कम समंदर होता है, वो उस जगह से जो है वो उड़ती हैं, उस जगह पर उड़ करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाती हैं या दूसरे मुल्क में जाती हैं, तो ये इल्म अल्लाह ताला उनको ना सिर्फ ये कि दे करके पैदा किया होता है बल्कि जब उड़ने के दौरान उनको अपने रास्ता मुतय्यन करने के लिए इल्म की जरूरत होती है तो वो ऐसा लगता है कि उसी वक्त उनको मिल रहा होता है, उसी वक्त उनको मिल रहा होता है, कोई रेडार्स उनके पास नहीं होते, कोई उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता लेकिन अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम उनका मुस्तकिल चल रहा होता है, क्या इंसान का भी यही हाल, यही मामला है, इंसान तो ऐसे नहीं चल सकता ना जिंदगी के अंदर, इंसान को तो इल्म सीखने की जरूरत है तब वो कोई काम करेगा, जब भी हमारे जो जहाज हैं चाहे वो पानी के जहाज हो चाहे वो सम यानी आसमान में उड़ने वाले जहाज हो, उनके अंदर सारा का सारा ये इल्म जो है वो स्टोर्ड होता है, पायलट्स ने भी सीखा होता है, उसके अलावा उनके पास किताबें होती हैं जो कि अब ऑनलाइन फॉर्म में होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट, राइट, इल्म के बगैर इंसान अमल नहीं कर सकता, कोई भी अमल नहीं कर सकता बगैर इल्म के, लेकिन क्या जुल्म है, क्या जहालत है, क्या यानी धोखा है जो कि इंसानों को लगा दिया कि पूरे के पूरे घर का निजाम और खानदान का निजाम और औलाद का निजाम ये सारा का सारा बगैर सीखे चलाओ तुम, अब जाहिर सी बात है बेड़ा गरक ही होना था और क्या होना था फिर उसके बाद, राइट, तबाही और बर्बादी ही आनी थी ना उसके बाद इंसानी मुआशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारी औलादों के अंदर, और क्या आना था उसके अलावा, अब जो है वो 30 साल के बाद किसी को ख्याल आए, किसी को 40 साल के बाद ख्याल आए, किसी को 50 साल के बाद ख्याल आए, अब बैठ करके जो है वो क्लासों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल की सुपरफिशियली बातें कर रहे हैं इन चीजों के बारे में, डिटेल नॉलेज तो नहीं मिल रही ना आप लोगों को, ठीक है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम डिटेल नॉलेज पे, नीयत तो बड़ी है और जो है वो दिल की तड़प भी बड़ी है कि भी डिटेल नॉलेज के ऊपर भी काम करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही वो काम हो रहा है, लोग तैयार ही नहीं इसके लिए, इस तरफ किसी की सोच ही नहीं जाती, कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, अब एक बंदा तो या दो बंदे तो बैठ के नहीं काम कर सकते ना, दो बंदे तो होने बड़ी बात है भाई, एक बंदा तो बैठ के नहीं काम कर सकता है सारा, ठीक है, कि भाई औरत को एग्जैक्टली क्या चीज, किस चीज का इल्म चाहिए, स्कूलों के अंदर जो इनसाब बना हुआ है, स्कूलों का जो सिस्टम बना हुआ है, ये एक दिन में एक बंदे ने बना लिया था सारा का सारा, लॉर्ड मैकाले ने अकेले को थोड़ी बैठ के बनाया था सारा का सारा, ठीक है, तो औरत के लिए पूरा का पूरा तालीमी निजाम ये कहाँ है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो होम इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस होते भी थे, ठीक है, ये नहीं कह रहे कि वो इस्लाम के मुताबिक होते थे, लेकिन चलो होम इकोनॉमिक्स के नाम पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, उनको तो अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान तक खत्म कर दिया गया। और उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर होम इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरी चीजें पढ़ानी शुरू कर दी गई, उनका फोकस ही जो है वो होम इकोनॉमिक्स से खत्म कर दिया, ठीक है। और वो एक आध जो है वो पूरे मुल्क के अंदर अगर एक आध है भी अभी, तो वो क्या पूरे मुल्क की जरूरत, हर औरत की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है क्या वो? ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज तो तुमने गली गली में खोल दी है, ठीक है, होम इकोनॉमिक्स की किधर खोलोगे, कहाँ पर है होम इकोनॉमिक्स के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो एक तो तालीम की जरूरत होती है, फिर दूसरी चीज जिसको जिसकी जरूरत पड़ती है कोई काम करने के लिए, वो क्या होती है भाई, जिसका जिक्र इस जुमले के अंदर है, वो होती है मोटिवेशन, ठीक है। खाली इल्म का हो जाना काफी नहीं होता कि हाँ ये चीज अच्छी है और ये चीज जो है वो बुरी है और ये ऐसे होना चाहिए और ये वैसे होना चाहिए, बल्कि अब जो है ना रास्ते पर चलने के लिए आपको एनर्जी की भी जरूरत होती है, राइट। एनर्जी भाई, चिड़िया को इल्म है कि उसको किधर जाना है, लेकिन अगर उसके अंदर जान नहीं है, दमखम नहीं है, तो वो कैसे उड़ेगी, वो तो नहीं उड़ सकती ना। तो इसी तरीके से एक होती है मोटिवेशनल एनर्जी, तो जिसकी जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। ये मोटिवेशनल एनर्जी जो है ये अप्रिसिएशन से मिलती है, अप्रिसिएशन से, यानी जब तारीफ होती है, किसी चीज को सराहा जाता है, तो फिर इंसान को मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की, उस काम को करने की, यानी उस इल्म पर अमल करने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर सराहे जाने की बजाय उसको आप जो है वो यानी तनकीद का निशाना बना दें, उसको जो है वो बुरा कहना शुरू कर दें, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर दें, मीन मीख निकालना शुरू कर दें, तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशनल एनर्जी जो है ना, अगर पहले थी भी तो वो भी खत्म हो जाती है, और इंसान अपने काम से नफरत करना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको ये काम बुरा लगना शुरू हो जाता है, अब वो इल्म होने के बावजूद वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। इल्म होने के बावजूद अगर इल्म उसने हासिल कर भी लिया था, अब वो फिर भी वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उस काम के ऊपर उसको ताने दिए जा रहे होते, उसको बुरा भला कहा जा रहा होता। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, हो सकता है आप खुद भी ये काम करती हो, कि जो आपको घर में बैठी हुई नजर आती है, बैठी हुई से मुराद ये कि घर का काम करती हुई नजर आती है, उसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाती है, कौन, औरतें बनाती हैं, ठीक है ना, औरतें बनाती हैं, सिर्फ मर्द नहीं कहते, मर्द तो कहते ही हैं, और ये मर्दों की क्लास होती है तो हम मर्दों को खूब इसके ऊपर सुनाते हैं, और कई दफा सुना चुके हैं, और आगे भी इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे, ये समझाते भी रहेंगे लेकिन सुनाते भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन औरतें क्या इसमें पीछे होती हैं, औरतें जो है वो दूसरी औरतों को जो घर का काम काज कर रही होती है उनकी उनकी तारीफ कर रही होती है, उनको मोटिवेट कर रही होती है, नहीं, औरतें उल्टा जो है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही होती है, ठीक है। हर औरत जो है जॉब कर रही है, अगर कोई एक औरत जो है वो जॉब ना कर रही हो, बाहर जा करके कमाने का काम ना कर रही हो, तो उसको ताने दिए जाते हैं, ऐसे जो है उसको सिंगल आउट किया जाता है कि जैसे वो कोई जुर्म कर रही है घर के अंदर, बच्चे संभाल करके और जो है वो उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करके और घर की जिम्मेदारियां पूरी कर, ठीक है। तो इसी वजह से इस जुमले के अंदर ये लफ्ज बड़ा अहम है कि नोबडी, नीदर मैन नॉर वेमेन, नीदर मेन नॉर वेमेन अप्रिशिएट होम वर्क, हाउस वर्क, ठीक है। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन होती है ना किसी चीज की, ये इंतहाई अहम चीज होती है। अगर आप किसी के, यानी आप किसी भी चीज को ग्लोरिफाई करना शुरू कर दें, जैसे सिगरेट पीना, भाई सिगरेट जो है वो सारी दुनिया क्यों पी रही होती है, क्योंकि टीवी के ऊपर जो एड्स आ रहे होते हैं और इस किस्म के जो इश्तिहार लगे हुए होते हैं, उसके अंदर सिगरेट नोशी को ग्लोरीफाई किया गया ना, ठीक है, कि भाई कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत मर्द भी और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी ये सिगरेट पी रही हैं। अमेरिका में ऐसी तो सिगरेट औरतों ने पीना शुरू किया, उन्होंने जो है वो मॉडल गर्ल्स को जो है वो सिगरेट मुंह में लगा करके जो है वो उसकी तस्वीरें खींची, और जो है वो हर जगह उन तस्वीरों को, अब जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो उन मॉडल गर्ल्स जैसा बनना चाहती हैं खूबसूरती में, एक से एक अपने ऊपर जो मेकअप होती हैं या उसके ऊपर जो मेहनतें करती हैं, क्यों, क्योंकि मॉडल गर्ल्स बनना चाहती हैं ना, तो अब जब मॉडल गर्ल के मुंह के अंदर उनको सिगरेट नजर आएगा तो वो समझेंगे ये भी अलामत है, अच्छे होने की अलामत है, क्योंकि हमारी जो मुक्तदा हैं, हमारी जो इमाम हैं, वो भी सिगरेट पी रही है। ठीक है, तो अब उन्होंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ये आज से जो है वो कोई 80 से 90 साल पुरानी बात है, जब अमेरिका के अंदर सिगरेट की इंडस्ट्रीज बनी थी और उन्होंने औरतों को भी इसके ऊपर लगाया। उसी तरीके से जॉब पे जाने वाली औरत हो, बाहर का काम करने वाली औरत हो, या ये ग्रेड्स लाने वाली औरत हो, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, A+ आ रहा है, A+ आ रहा है, अब सब मिलकर के तारीफें कर रहे हैं। ओ जी उस बच्ची को स्ट्रेट एज आए हैं, उस बच्ची के जो है वो, उस बच्ची के जो है वो इतने एज आए हैं, उस बच्ची के इतने ये आए हैं, उस बच्ची के इतने वो आए हैं। अब जिसके नहीं भी आ रहे हैं ना, जो कि घर का काम सीख रही थी, अपनी जिम्मेदारियों का इल्म हासिल कर रही थी, उसके भी दिल के अंदर तमन्ना पैदा होगी कि मैं भी क्यों ना ग्रेड्स लेकर के आऊं, सब मेरी तारीफ करेंगे। ठीक है, सब मेरी तारीफ करेंगे, ठीक है, मेरे अब्बा भी मेरी तारीफ करेंगे, वरना तो वो करते नहीं है तारीफ, अम्मा की तो कभी करी नहीं उन्होंने तारीफ, मेरी भी तारीफ नहीं करेंगे, मैं क्यों घर का काम करूं, मैं यूनिवर्सिटी जाकर के जो है वो अच्छे से ग्रेड्स ला करके और कोई करियर क्यों ना बना लूं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से शैतान जो है ना वो अल्लाह के निजाम के खिलाफ अल्लाह के बंदों को उकसाता है, और हम शैतान के आलायकार बने हुए होते हैं। क्यों बने होते हैं शैतान के आलायकार? इसलिए कि हमने इल्म नहीं हासिल किया। अगर हम इल्म हासिल कर लें ना कि किस चीज में हमारा फायदा है और किस चीज में हमारा नुकसान है, ये असल इल्म कि किस चीज में किसका फायदा है, इसको असल इल्म कहते हैं। अगर ये इल्म हमें हासिल हो जाए तो फिर किसी के तानों के बावजूद भी जो है ना वो हम सेल्फ मोटिवेशन भी कोई चीज होती है ना, ये तो नहीं जरूरी तो नहीं है कि भाई हम बस जब वो मोटिवेट करेंगे तभी हम काम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। भाई अल्लाह ताला ने जो मोटिवेट किया है, कुरान अजीम व शान के अंदर अल्लाह ताला मोटिवेट नहीं करते। ठीक है, मन अमिल अमलन सालेहन मिन ज़करिन अव उनसा, ठीक है, कि जो भी नेक अमल करेगा, यानी अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक चलने को नेक अमल नहीं कहते, तो और किस चीज को नेक अमल कहते हैं? राइट, जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, हम जरूर बिल जरूर उसको एक अच्छी जिंदगी देंगे, तैयब जिंदगी देंगे। क्या ये मोटिवेशन एक अल्लाह की बंदी के लिए काफी नहीं है? ठीक है, क्या लिखा आपने कि द सेम सॉर्ट ऑफ सबलिमिनल मैसेज इज सेंट बाय शोइंग अ वुमन वर्किंग एंड मैनेजिंग हर होम इन एडवर्टीजमेंट्स। आजकल तो ये चल रहा है ना, ठीक है, आजकल तो कह रहे हैं कि यू कैन डू बोथ। ठीक है, क्यों, हाउ कैन यू डू बोथ? बिकॉज घर के अंदर जो मैनेज करना है उसमें तो कुछ काम करना ही, उसमें करने का काम नहीं है, वो तो आपके बच्चे जो है वो तो दूसरे पाल रहे हैं ना, आपके बच्चों को तालीम तो दूसरे लोग दे रहे हैं, ठीक है ना, या बच्चे को तो आपने किसी और के हवाले कर दिया है, तो इस वजह से मैनेजिंग द होम इज बेसिकली नो बिगी, राइट, इट्स अ नॉन वर्क। तो वो एडवर्टीजमेंट्स में अब ऐसे ही दिखा रहे हैं कि घर का, जैसे वो क्या, वो एक बाकायदा एक ऐड आया था, मुझे किसी ने बताया था कि खातून जो है वो तो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर बैठी हुई है और घर से जो है ना वो उनके हस्बैंड साहब जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, और वो घर में जो हस्बैंड बैठे हुए ना वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं, और अम्मा जो है वो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर बैठ करके वहां से बच्चों को कह रही हैं, ऐसे इशारे कर रही हैं कि हाँ बेटा तुम खा लो, तुम खा लो, और शोहर साहब घर में बैठ के खिला रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके शोहर साहब आपके घर का काम कर रहे हैं तो फिर यू कैन डू बोथ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये सबलिमिनल मैसेजेस क्या होंगे, यानी इससे बड़ी और जहालत और क्या हो सकती है? नाउ डेज दे आर शोइंग लेडीज इन मिलिट्री यूनिफॉर्म इन न्यूज, इवन वी सी इन अरब कंट्रीज। नाउ डेज नहीं, ये मिलिट्री के अंदर बहुत दिहाइयों से जो है ना वो औरतें मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर बहुत बैठी हुई है। सेल्फ मोटिवेशन प्लस अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत लो कर लेना कि सब अप्रिशिएट करें, अल्लाह के फजल से अगर हस्बैंड कर दे रहे हैं तो यही बहुत है। ठीक है, बेशक हस्बैंड कर दे तो बहुत हो जाता है, अगर शौहर जो है ना वो तारीफ कर दे तो वाकई बहुत हो जाता है औरत के लिए। ठीक है, लेकिन अब अगर नहीं कर रहे तो अब क्या करें? ठीक है ना, अब शौहर नहीं कर रहा है आपकी तारीफ तो अब क्या करें? अब कहें कि भाई ठीक है अब मुझे जहन्नुम में जाना है, क्योंकि शौहर ने मेरी तारीफ नहीं करी ना, तो अब मैंने जहन्नुम में जाना है, अब तो मैं जाऊंगी जहन्नुम में, अब कुछ कुछ कर लो तुम, अब तो मैं जहन्नुम में ही जाऊंगी।
और अपने बच्चों को भी जहन्नुम में लेके जाऊंगी। क्यों? इसलिए कि शौहर मेरी तारीफ नहीं करते। क्या ये बात ठीक है भाई? अगर शौहर शौहर तारीफ करें तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने बेटों की तरबियत करें ना इस तरीके से। आपको अल्लाह ने बेटे दिए हैं अगर, तो उनकी तरबियत करें कि बेटा अपनी बीवी की तारीफ करना, ठीक है, अपनी बीवी को सपोर्ट करना, ठीक है। लेकिन आपके अपने जो शौहर हैं उनकी तो जो कर दी सो कर दी उनकी अम्मा ने और उनके अब्बा ने, तो अब आपको ऐसे शौहर मिल गए हैं, तो अब क्या क्या मतलब है इसका कि अब मैं जहन्नुम में जाऊंगी, बाहर बाहर जाके जॉब करूंगी, घर का काम नहीं करूंगी, बच्चों के जो है वो तालीम तरबियत का इल्म नहीं हासिल करूंगी क्योंकि शौहर मेरी तारीफ नहीं करते। क्या ये सही एटीट्यूड है? वॉट अबाउट अल्लाह? व्हाट अबाउट अल्लाह? क्या शौहर खुदा है? क्या शौहर ने अल्लाह को रिप्लेस कर लिया है? अब अल्लाह की जरूरत नहीं है मुझे, अब तो शौहर है ना, बस शौहर ही मेरा अल्लाह है। भाई वो अल्लाह नहीं है, वो खुदा भी नहीं है, वो मजाजी खुदा है, ज्यादा से ज्यादा मजाजी, हकीकी नहीं है, ठीक है। तो जब अल्लाह तारीफ कर रहा है ऐसी औरत की जो कि अल्लाह के बनाए हुए निजाम को मानती है और उसके ऊपर चलने, और अल्लाह जब उससे वादे कर रहा है कि तुम्हें मैं हयातन तय्यबा दूंगा, हयातन तय्यबा में एक्चुअली इस दुनिया की हयात भी आती है, दिल का इत्मीनान मिलेगा और आखिरत के अंदर जन्नत मिलेगी, ठीक है, और ऐसे शौहर मिलेंगे जन्नत के अंदर जो के बेहतरीन अखलाक वाले शौहर होते हैं, वो मिलेंगे जन्नत के अंदर, ये नहीं मिलेगा ये वाला जो इस दुनिया में तारीफ नहीं करता था, ठीक है। तो फिर उसके लिए भी तो अल्लाह ताला कल को कहेंगे ना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा खुदा था, वो तुम्हें रिस्क देता था, वो तुम्हें जो है वो खिलाता फैला पिलाता था, और पीछे कोई नहीं था, मैं नहीं था जिसने तुम्हें शौहर दिया, मैं नहीं था जिसने कि तुम्हें घर दिया, मैं नहीं था जिसने कि तुम्हें माँ बाप दिए, मैं नहीं था जिसने कि तुम्हें जितनी नेमतें तुम्हारे पास थी वो तो मैंने दी थी ना, तो तुमने मेरी तरफ क्यों नहीं इल्तफात किया, तुमने मेरे कुरान को अहमियत क्यों नहीं दी, ठीक है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बातों को क्यों नहीं अहमियत दी, उस दिन फिर हम क्या करेंगे? फिर तो यही कहेंगे ना कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है, दुनिया में भी जो है वो पिसते रहे और आखिरत में भी पिसते रहेंगे। भाई आखिरत तो बना रहे ना कम से कम, दुनिया नहीं बना सके, या दुनिया बन नहीं सकती भैया, हमारे कब्जे में तो नहीं है दुनिया ना, हमारे कब्जे में तो लोग नहीं है कि हम उनको तब्दील कर दें, तो आखिरत तो बनाए ना जो कि अल्लाह ताला ने हमारे कब्जे में दी है, आखिरत हमारे कब्जे में अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने लिखा सास का इस मसले में बहुत ज्यादा रोल होता है, ना खुद तारीफ करती है और बेटे की भी कान फिरती है, ठीक है ना, तो अल्लाह है ना वो भी सास को समझेगा, सास को देख लेगा और देख भी लेता, दुनिया के अंदर इबरत के नमूने भी बन जाती हैं ऐसी सासें, लेकिन सास भी तो औरत ही होती है ना, तो आपने भी इंशाल्लाह कल को सास बनना है, आपको भी तो अल्लाह ने बेटे दिए हैं ना, तो आप क्या करेंगी उस वक्त, ठीक है ना, अल्लाह करे आप जो है वो अपने बेटों की ऐसी तरबियत करें कि वो आपके सास जैसी ना हो, ठीक है, उनसे बेहतर हो कम से कम, या जैसा आप उनको समझती हैं उससे उससे बेहतर हो, ठीक है। बहरहाल तो ये आज की क्लास के नोट्स बनाने वाली भी ऐसी बातें नहीं हुई, बस जो पुरानी बातें थी उन्हीं को हमने रिपीट कर दिया, बाकी जो है वो उमूर खाना में सहाबियात का किरदार, तो देखें सहाबियात का किरदार जो है वो तो हम जल्दी से पढ़ गए ना, 10 मिनट में खत्म कर सकते, ठीक है, लेकिन मसला सहाबियात के किरदार का नहीं, ठीक है, सहाबियात का किरदार हमारे लिए आसमान के तारों के जैसा, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का एक एक हदीस है जो कि कुछ सजा जो है वो ज़ईफ़ हदीस भी कहते हैं कुछ सजा, कि असहाबा कन नुजूम, मेरे जो सहाबी हैं ना वो आसमान के सितारों जैसे, तुम उनमें से जिसकी भी तकलीद करोगे ना तो तुम हिदायत पा जाओ, तो भाई सहाबियात भी तो सहाबा के अंदर ही शामिल है ना, तो सहाबियात तो हैं आसमान के तारे, ठीक है, और हम हैं जमीन के। अब बड़ी प्यारी बात हमारे एक दोस्त ने करी, ठीक है, इस वाली हदीस को जब हमने बयान किया ना लोगों के सामने, अभी इस हफ्ते की बात है, मजलिस में छोटे से ऐसे बैठे हुए थे साथियों के साथ, तो ये वाली बात करी इस वाली हदीस की, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी, उन्होंने कहा कि हजरत इस वाली हदीस से तो ये पता चलता है कि सितारे तो आसमान की चीज होते हैं, तो वो तो हमेशा आसमान पे रहेंगे, ठीक है, और हम कहाँ हैं, हम जमीन की चीज है, यानी गैर सहाबी जो भी होता है ना वो जमीन का होता है, जमीन की मखलूक है, सहाबा गोया के आसमान की मखलूक थे। ठीक है, अब हम में से कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, ठीक है, यानी गैर सहाबा में से कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो जमीन के ऊपर एक पहाड़ की जितना ऊंचा हो जाएगा, ठीक है ना। कोई सबसे अच्छा हो जाए तो वो जो है वो केटू पहाड़ जितना ऊंचा हो जाएगा, कोई जो है वो माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितना हो जाएगा, लेकिन सहाबा जो है वो आसमान पर ही रहेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया सहाबकन नुजूम, सहाबा आसमान पे रहेंगे। अब देखें माउंट एवरेस्ट कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, लेकिन आसमान तो उससे बहुत 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 ज्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, तो अब उनको देख करके, जो आसमान पे सितारे होते हैं उनको देख करके हम डायरेक्शन तो पता कर सकते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन पे एग्जैक्टली चलना कैसे है, ठीक है, ये हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ये हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आसमान के तारों की बातें करने करने से जो है ना वो जिंदगी नहीं कटने वाली है। ये बात क्यों की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि सहाबा 1400 साल पहले इस दुनिया से गुजर चुके हैं, ठीक है, उनसे हमने उसूल तो सीखने हैं, लेकिन 21वीं सदी जिसके अंदर हम रहते हैं ना, इस 21वीं सदी के अंदर हमें उन उसूलों पे कैसे अमल करना है, ये काम हमें खुद करना होगा। ठीक है, जिस तरह से के स्कूल कॉलेजों के अंदर जो आपके चीजें पढ़ाई जाती हैं उनके अंदर जितनी तफसीलात हैं और जितनी उनके अंदर जो है वो बारीकियां हैं और जितनी उनके अंदर जो है वो किताबें बनाई गई हैं और जितना उनका जो है वो एक स्केड्यूल बनाया गया है, तो उसके मुताबिक फिर जो है वो स्कूल का निजाम चल रहा होता है ना। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से घर का निजाम भी जो है ना वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं चल जाएगा, उसके लिए इस पे डिटेल्ड मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, डिटेल मेहनत करने की जरूरत है, जो कि किसने करनी है, सहाबा ने आके नहीं करनी है, ये वाली मेहनत ये हमने खुद करनी है, ये आपने करनी है। ठीक है, क्यों, आप हैं घर वाले, ठीक है, ये औरतों ने करनी है, ये बच्चियों ने करनी है, ये वाली मेहनत। ठीक है, बहरहाल सहाबा की जिंदगी तो जो कि सितारों के मानंद है, तो उसके पता भी होना हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हीं को तो देखें ना, हम ये तो नहीं कि हम जो है वो किसी और को देखना शुरू कर दें। तो फरमाते हैं कि सहाबियात की जिंदगी को देखें तो वो भी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहा करती थी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरत को खिदमत के जरिए से जन्नत दी। हदीस मुबारका में है कि सैयदा फातिमतु जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो खातून जन्नत थी, वो सारा दिन अपने घर के कामों में मशरूफ रहती थी, अपने हाथ से रोटी पकाती थी, बर्तन धोती थी, उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे, यानी मेहनत करने की वजह से हाथ में सख्त गट्टे बन गए थे। ठीक है, उनके जो शौहर थे ना अली रतान, वो भी मिट्टी में सो रहे होते थे, ठीक है ना, अबू तराब अली रतान का लकब, वो मिट्टी के बाप, क्यों, इसलिए कि वो जमीन पे सो रहे थे, उनके मुंह के ऊपर मिट्टी लग गई। ठीक है, तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि मर्द जो है वो अपना हिस्से का काम करता है, लेकिन औरत ने अपने हिस्से का काम करना होता है, चाहे मर्द कर रहा हो या ना कर रहा, उसी तरह मर्द भी अपने हिस्से का काम करता है, चाहे औरत कर रही हो या ना कर रही हो। ठीक है, दूसरे के ऊपर बंदूक रख करके ना अपनी गोली नहीं चलानी चाहिए, उससे किसी का फायदा नहीं होता, किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ हमारा नुकसान होता है। तो फातिमा जहरा ने भी जो है वो ऐसे ऐसे मेहनत करी होती थी कि हाथ के अंदर यानी सख्त पोर्शन बन गए थे हथेली के अंदर। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, नबी अलैहिस्सलाम की लाडली थी, मगर वो अपने घर में चक्की खुद पीसती थी और गंदम का आटा खुद बनाती थी। ठीक है, सादा जिंदगी होती थी, लेकिन सादगी का मतलब ये भी होता है कि गंदम वगैरह जो है ना ये खुद ही पीसनी पड़ती है, उसको खोशों से जो है वो अलग खुद ही करना होता है, और उसको पीस करके आटा जो है ना वो खुद ही बनाना होता है। वो वाकया इफ्क का वाकया भी शायद आपने सुना हो, कि जब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर बुहतान लगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने घर की एक खादमा थी जो कि घर में आती जाती रहती थी, ठीक है, तो उनसे पूछा कि आयशा के बारे में, आयशा को तुम कैसा जानती हो, आयशा को तुम कैसा जानती हो। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आयशा इतनी भोली भाली हैं, इतनी सीधी सादी हैं, इतनी इनोसेंट हैं कि मैं उनके बारे में कोई बुरी चीज नहीं जानती, कोई बुरी चीज नहीं देखती, सिवाय इसके जो कि बुराई नहीं थी, वो इनोसेंस की एक एक यानी मिसाल थी कि कभी जो है ना ये यानी इतनी मासूम सी है कि कभी ये आटा गूंदती है ना, पेड़ा बनाती है ना, तो इनको नींद आ जाती है, राइट? आटे का पेड़ा बनाती है तो इनको नींद आ जाती है, तो जो बकरी होती है ना वो आती है, वो आटे के पेड़े को खा जाती है, आटे का जो पेड़ा बनाया था ना उन्होंने, बकरी आके खा जाती है क्योंकि इनको नींद आ जाती है, ठीक है ना? यानी वो बेसिकली इस तरीके से क्या बता रही थी कि आयशा तो ऐसी है, ऐसी भोली भाली है। लेकिन इस वाक्य से हमें यह भी पता चलता है ना कि उम्मुल मोमिनीन के लिए जो है वो बाहर से खाने नहीं आ रहे होते थे, ठीक है, तंदूर से रोटियां भी नहीं आ रही होती थी, घर में रोटियां बना रही होती, और उस जमाने में ऐसा जो है ना वो प्रोसेस्ड किस्म का आटा तो मिलता नहीं था। अभी हमारे एक बुजुर्ग जो है अपना वाकया, बल्कि उनका वाकया जो है वो हमारे बच्चों की क्लास के अंदर हमारे भाई बता रहे थे, कि नहीं बल्कि मैंने शायद किताब में पढ़ा था, कि बड़े थके हारे जो है ना वो मदरसे से घर आए, जब वो बच्चे थे मदरसे में पढ़ते थे, तो घर आए तो अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं खाने को, ठीक है, खाना देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करो कि हमारी एक जमीन है तो वहां पे गंदुम लगी हुई है, अगर तुम वहां से कुछ गंदुम काट के ले आओ ना तो मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूं। अब सोचें जरा, वो गंदुम की फसल से गंदुम काट करके लेकर के आए, उसमें उनको कितना वक्त लगा होगा, फिर अब उस गंदुम को प्रोसेस करने का, जो हमें तो पता ही नहीं कि उसको क्या क्या करना होता होगा, ठीक है, हमें तो जबरदस्त किस्म का आटा मिल जाता है, ठीक है, तो उस आटे को जो है वो बस पानी डालना होता है, उसको जरा गूंदना होता है, वही इतना मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो घर का काम है वो साहब याद क्या करती थी, अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो हमें करना है वो हमें सीखना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो बात बाकी, अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह आगे बात क्या करेंगे। इस वाक्य से ये इशारा मिलता है कि बच्चियों से कुछ हो जाए तो सास को फौरन गुस्से में नहीं आ जाना चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ठीक है ना। दादा हम सबको हिदायत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, जो अपने करने का काम है उसको सीखने की तौफीक अता फरमाए, और सीख के अच्छे से करने की तौफीक अता फरमाए। वाह, अलहमदुल्ला, सलाम।